हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तब सोनल परी तारा को छेड़ते हुए बोली थी, ये क्या रानी परी, अपने महबूब से मिलने की खुशी यहाँ तक सुनाई आ रही है। सोनल परी के मुंह से अपनी रानी परी सुनकर तारा हैरान हो गई थी। कहने लगी थी, ये क्या कह रही हो तुम। तभी सोनल परी जल्दी से तारा परी की ओर देखकर कहने लगी थी, मैं क्या कह रही हूँ, मैं सही तो कह रही हूँ, तुम परी परलोक की होने वाली रानी परी हो, तो रानी परी कह ही रही हूँ, मैं तुम्हें रानी परी कहने की आदत डाल रही हूँ। जैसे ही सोनल परी ने ये कहा, अचानक से तारा परी के दिल में कुछ दर्द सा हुआ था, क्योंकि ये बात सच थी। तारा परी परीलोक की होने वाली रानी परी थी, जो कि अपना मकसद पूरा होने के बाद बना दी जाती। लेकिन तारा परी अब रानी परी नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि वो अपने अमन के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन उसका परीलोक भी जाना जरूरी था, क्योंकि उस राक्षस को मारना भी जरूरी था। इसलिए तारा परी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वेल, तभी सोनल परी ने जैसे ही तारा परी के चेहरे पर उदासी देखी, उसने जल्दी से बात करेक्ट करते हुए कहा था, अच्छा अच्छा, मैं अब से तुम्हें रानी परी नहीं कहूंगी, तुम्हें तारा परी ही कहूंगी। और अभी तो बहुत सारे काम हैं, अभी कौन सा तुम रानी परी बन रही हो, तो जो काम बाद में होना है तो उसके बारे में बाद में सोचना चाहिए, और उसके चक्कर में अपना आज खराब नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वो दोनों जल्दी उसने तारा परी को थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश की थी। लेकिन तारा परी जल्दी से फीकी हंसी थी और फिर आगे बढ़ने लगी थी। और जैसे ही वो लोग आगे गए तो उसने देखा कि पूछते ही नहीं हवेली के हाल में सभी के सभी बावर्ची समेत अमन खड़ा हुआ था, और उसके साथ ठीक सामने तीसरा जादुई बावर्ची खड़ा था। तारा परी के हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। और अमन को कुछ देर वो उन्हें अपनी आंखों से निहारती रही थी, और उसके थोड़ा सा दूर जाकर खड़ी हो गई थी और वहीं से देखने लगी थी। और तारा परी के सोनल की ओर देखकर मन ही मन में बातें करने लगी थी कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, और ये सब लोग यहाँ पर जमा क्यों हुए हैं, और ये तो सात जादुई बावर्ची है ना, तो फिर ये लोग खाना क्यों नहीं बना रहे हैं। तभी उसे अमन की आवाज वहां गूंजी थी, और वो अपने जादू तीसरे नंबर के जादू बावर्ची की ओर देखकर कह रहा था, अब तुम हमें पूरी बात बताओ कि आखिरकार हुआ क्या था, और तुम्हें इंसानी मांस खाने की आदत क्यों लगी, तुम हमें सीधे तरीके से जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों हमें अपने रंगरेलियों की कहानी सुना रहे हो। जैसे ही अमन ने ये कहा, वो तीसरा जादुई बावर्ची कांपने लगा था, और जैसे ही तारा परी और सोनल परी के मुंह से ये इंसानी मांस खाने वाले बात सुनी, उन दोनों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। हालांकि सोनल परी ने तारा परी को तीसरे जिन के बारे में भी ये बात बता दी थी कि एक तीसरा जिन इंसानी मांस खाते हुए पकड़ा गया है, तो तारा परी काफी ज्यादा हैरान हुई थी। लेकिन सोनम परी ने उसे बता दिया था कि अमन ने उसकी उसे काफी ज्यादा कठोर सजा दी है, वो भूलकर भी कभी किसी का कोई इंसानी मांस नहीं खा सकता है। लेकिन अब एक बार फिर इंसानी मांस खाने वाली बात तारा परी और सोनल परी के सामने आई थी, तो तारा परी के हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, और वो भी ये सच जानना चाहती थी कि आखिर इंसानी मांस खाने की शुरुआत करी किसने थी। और वो भी अमन से ठीक थोड़ी सी दूरी पर आकर खड़ी हो गई थी, और जैसे ही तारा परी अमन से ठीक थोड़ी सी दूरी पर आकर खड़ी हुई, अचानक से अमन का दिल जोरों से धक धक करने लगा था, और वो अपने आसपास अच्छी तरह से देखने लगा था। साथ ही साथ उसे तारा परी की खुशबू बड़ी ही शिद्दत से आने लगी थी, और अचानक ही उस तीसरे नंबर के जादू बावर्ची से कठोर लहजे में बात करते करते तारा की खुशबू सूंघते ही अमन के चेहरे पर अपने आप ही एक प्यार भरी मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे तारा परी ने देख लिया था। तारा परी ने अमन को मुस्कुराते हुए देखकर वो खुश हो गई थी। उसका दिल कर रहा था कि वो इसी वक्त जाए और अमन को जोरों से गले से लगा ले, और उसे इस तरह से चिपकी रहे और उससे एक मिनट के लिए भी अलग ना हो। तभी सोनल परी ने मन ही मन में तारा से बातें करना शुरू कर दिया था, और कहने लगी थी, अगर तुम इसी तरह से अमन को देखती रही तो मुझे नहीं लगता कि तुम इंसानी मांस खाने वाली बात का पता लगा पाओगी, तुम्हें अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। इसकी बात सुनते ही कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है, तभी सभी अमन को मुस्कुराते हुए देखकर बाकी के छह बावर्ची हैरान हो गए थे और उनकी ओर देखकर कह रहे थे, जिन महाराज आप क्या सोच रहे हैं और आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तभी जिन महाराज ने अपनी मुस्कुराहट को गायब किया था और उनकी ओर देखकर कहने लगा था, कुछ नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, और उस बावर्ची की ओर देखकर कहने लगा था, अब तुम अभी पूरी की पूरी बात बताओगे, और पूरी बात बताए अगर तुम एक बार भी बीच में नहीं रुकोगे। जैसे ही उस बावर्ची ने ये सुना, उसने हाँ में अपना सर हिला दिया था और जल्दी ही उसने आगे कहना शुरू कर दिया था। तभी उस जादुई बावर्ची ने आगे कहना शुरू कर दिया था, जिन महाराज मेरा यकीन कीजिए, फिर एक रात जब वो औरत मेरे साथ जिस्मानी रिश्ता बना रही थी, तब अचानक वो औरत ने जोरों से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैं उसकी ये बात समझ ही नहीं पाया था कि आखिरकार इसको हुआ क्या है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, तभी अचानक से वहां पर एक बड़े लंबे लंबे बालों वाला अघोरी वहां आ गया था। उस अघोरी को देखकर मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक तो उस वक्त मैंने कोई कपड़े नहीं पहने थे और वो अघोरी इस तरह से अचानक उस औरत के सीधे कमरे में आ गया था, तो मैं पूरी तरह से हैरान हो गया था। तभी उस हसीन औरत, जो कि उस वक्त बिल्कुल बेकपड़ा थी, उसने उस अघोरी को देखते ही उसे गले से लगा लिया था। ये देखकर मेरा दिल जोरों से जलने लगा था और मुझे बहुत ही तेज गुस्सा आने लगा था। मैंने गुस्से से मैं खड़े होकर उस औरत के बालों को कसकर पकड़ लिया था और कहने लगा था, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी आंखों के सामने किसी और आदमी को हाथ लगाने की। तब वो औरत मेरी ओर गुस्से से देखने लगी थी और उसने मुझे एक खींच कर चाटा दे मारा था और मैं सीधा उसी बेड पर जा गिरा था। तब वो अघोरी उस औरत की ओर देखकर कहने लगा था, मैंने तुझे कहा था कि तू एक आदमी के साथ 7 दिनों तक ही रिश्ता बन सकती है, लेकिन ये क्या करने जा रही थी तू? तू ही इसके के साथ 7 दिन तक रिश्ते बना चुकी है। आज 8वां दिन है और तू आज भी इसके साथ जिस्मानी रिश्ता बना रही है। जैसे ही उस अघोरी ने ये कहा, वो औरत मुझे घूर कर देखने लगी थी और कहने लगी थी, और जल्दी ही उसने उस अघोरी के पैर पकड़ लिए थे और कहने लगी थी, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे मुझसे गलती हो गई है। इस आदमी के हष्टपुष्ट शरीर को देखकर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और मैं इसके साथ रिश्ते बनाने के दिन ही भूल गई, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर वो बुरी तरह से उस आदमी की उस अघोरी के सामने गिड़गिड़ाने लगी थी। मेरा यकीन कीजिए जिन महाराज, उस वक्त मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, और तभी मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने थे और उस औरत को इस तरह से नग्न बदन उस अघोरी के सामने देखकर मुझे काफी शर्म सी महसूस हो रही थी, इसीलिए मैंने एक बेड से चादर उतारकर उस औरत के जिस्म पर डाल दी थी।
लेकिन जैसे ही मैंने वो चादर उस औरत के जिस्म पर डाली, उस अघोरी ने उस चादर को उतार कर फेंक दिया था और मेरी ओर देखकर कहने लगा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके जिस्म को हमारी आंखों से ढकने की? हम इसके जिस्म का एक एक हिस्सा देख चुके हैं, समझे तुम? जैसे ही उस अघोरी ने ये कहा, मैं काफी हैरान हो गया था और तभी उस अघोरी ने मेरे ही सामने उस औरत के साथ रिश्ता बनाना शुरू कर दिया था। मेरे यकीन कीजिए जिन महाराज, उस वक्त मेरी क्या हालत थी मैं आपको बता नहीं सकता था। और उसके साथ रिश्ता बनाने के बाद जैसे ही मैं वहां से जाने लगा, उस अघोरी ने मुझे मना कर दिया था कि मैं यहां से हिल भी नहीं सकता हूं। उसके बाद उस औरत ने उस अघोरी के साथ रिश्ता बनाकर जल्दी से कपड़े पहने थे और अपने आदमियों को हुक्म दिया था कि वो मुझे पकड़ लें। मैं काफ़ी हैरान था कि आखिरकार मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है और मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वो औरत मेरी ओर बढ़ी थी और कहने लगी थी, तूने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। तू एक बूढ़ा और मुझसे दोगुनी उम्र का आदमी था, लेकिन फिर भी तूने अपनी दौलत के लालच में मुझसे शादी कर ली और अपनी दौलत का लालच मेरे माँ बाप को दिखाया, जहाँ मेरे बाबा ने तेरे हाथों मुझे बेच दिया। और उसके बाद तू मुझे जिस्मानी सुख नहीं दे पाए, तू मुझे खुश नहीं रख पाया। उसके बाद मैंने तेरे नौकरों के साथ रिश्ते बनाने शुरू कर दिए, लेकिन तेरे नौकर भी मुझे खुश नहीं रख पाए। तो फिर जब एक वो अघोरी मेरे द्वार पर आया, उस अघोरी का हट्टा कट्टा जिस्म मैंने देखा तो मैं उस अघोरी पर मोहित हो उठी। और जैसे ही उस अघोरी को मैंने अपने मन की लालसा बताई, उसे अघोरी ने मुझे कहा कि अगर तू हमेशा खूबसूरत और जवान होकर रहना चाहती है तो तुझे किसी एक मर्द के साथ 7 दिनों तक रिश्ता बनाना होगा और उसके बाद उसके जिस्म को 7 दिनों तक खाना होगा, वो भी जिंदा। जैसे ही मैंने ये सुना, मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। लेकिन वो औरत यहीं पर नहीं रुकी थी, उसने आगे कहना शुरू कर दिया था। वो अघोरी ने मुझे कहा था कि अगर मैं 7 मर्दों के साथ 7 दिनों तक जिस्मानी रिश्ता बनाकर 8वें दिन उन्हें खाऊंगी और 8वें दिन अघोरी के साथ रिश्ता बनाऊंगी, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत रहूंगी। इतना ही नहीं, मेरे पास कभी भी माल दौलत की भी कमी नहीं होगी। लेकिन ये देखो, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने तो कायदे के मुताबिक 7 इंसानों के साथ जिस्मानी रिश्ता भी बनाया। इतना ही नहीं, केवल एक इंसान को छोड़कर, जो कि मेरी कैद में है, उसके साथ मैं कल से खाना शुरू करूंगी। 7 दिनों तक मैं उसके भी मांस को खाऊंगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे शरीर पर इस तरह से झुर्रियाँ कैसे आ सकती है। वो औरत कितने इसी तरह के सवाल अपने उस बूढ़े पति से कर रही थी, लेकिन उसका बूढ़ा पति उसकी ओर केवल देखे जा रहा था। और फिर अचानक से उसका पति जोरों से हंसने लगा था और कहने लगा था, तूने आज तक कितने ही मजलूमों को अपना निशाना बनाया है, कितने ही बेकसूरों के साथ तूने नाइंसाफी की है। अब तू देख तेरे साथ क्या होता है, तेरी हालत बद से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। एक इंसान होकर तूने डायन वाला काम किया है, एक इंसान होकर तो इंसानी मांस खाने लगी है। तेरे जितनी घटिया औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। जैसे ही उस आदमी ने उसे सारी बातें कहीं, अचानक से उस औरत को बहुत गुस्सा आया था और उसने अपने पति का गला जोरों से दबाना शुरू कर दिया था। जिन महाराज सूरत की इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी थी कि इंसानी मांस खाने से इंसान की खूबसूरती बनी रहती है, उसने इस बात पर यकीन भी कर लिया था। और फिर मैं एक बार फिर कैद होकर उसकी जेल में बैठ चुका था। लेकिन अगले दिन जैसे ही मुझे रिहा किया गया, उसके सामने पेश किया गया, अचानक से उस औरत ने अपने दांतों से मुझे मेरे कंधे पर काट लिया था। लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जिन जादुई बावर्ची हैं तो हमारे जिस्म में मांस ही नहीं है। जैसे ही उस औरत ने मुझे काटने की कोशिश की, अचानक से उसके दांतों में दर्द होने लगा था।
कब तक रोकेगी तारा खुद को अमन से मिलने से? क्या करेगा अमन सारा सच जानकर? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।